नमस्कार, समाधान में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों की चर्चा चल रही है। विद्यार्थियों की बहुत सुंदर सुंदर बातों पर हमने चर्चा की है कि किन किन बातों पर विद्यार्थी वर्ग यदि ध्यान दे तो उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, उसका मनोबल बढ़ा चढ़ा रहेगा और उसके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं, उनका वो सहज ही समाधान कर पाएगा। साथ ही जहां जहां उसका समय वेस्ट हो रहा है, जिसके कारण वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता या जिसके कारण कहीं ना कहीं उसके मन में निराशा या हीनता के भाव पैदा हो जाते हैं, उन सब पर भी हमने चर्चा की है। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। प्राता जी, बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं कार्यक्रम के, बहुत ध्यान से लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनके फीडबैक भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। पिछली बार आपने एक बात कही थी, एक बहुत सुंदर श्लोक कहा था आपने, और जहां तक वो श्लोक मुझे याद है, आप करेक्ट कीजिएगा यदि मैं गलत कहूं तो, कागचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी सदाचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम, संभवतः यही बात थी। और जब हमने कार्यक्रम पूरा किया, जब मैं घर गया तो हमारे पड़ोस में एक शिक्षक रहते हैं, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, रुपेश जी ये बहुत पहले की बात भ्राता जी ने कही है, आप उनको अपडेट करें, आजकल के विद्यार्थी थोड़े से अपडेटेड हो गए हैं। उन्होंने अपने एक विद्यार्थी की बात मुझे कही और उन्होंने कहा कि उनके एक विद्यार्थी ने इसी श्लोक को मॉडिफाई किया है और वो मॉडिफिकेशन इस प्रकार है, हाथ चंचल पांव चंचल और चंचल सकल अंग, गहन निद्रा अति भोजन विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये एक परिवर्तित रूप, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम पहले के जमाने में सिखाया करते थे तमसो मा ज्योतिर्गमय, कितनी गहन बात है, कितना सार समाया है, लेकिन आज का विद्यार्थी इसे मॉडिफाई करता है, चेंज करता है तमसो मा ज्योतिर्गमय को कि तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। तो ये जो एक परिवर्तन है, तो वो बहुत चिंतित थे इस विषय से और ये कह रहे थे कि विद्यार्थियों की समस्या पे तो आप चर्चा कर रहे हैं लेकिन हमारे टीचर्स की भी समस्या पे आप चर्चा करें कि बच्चे इतने चंचल हो गए हैं, इतने अनुशासनहीन हो गए हैं, उन्हें कंट्रोल करना हमारे लिए कितनी कठिन बात हो जाती है। तो इस विषय पर भी कि उनकी चंचलता, उनकी अनुशासनहीनता या ये जो गलत दिशा में वो अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं, इस पर भी कुछ चर्चा हो, ये वो चाहते थे।
बिल्कुल, टीचर्स की भी ये बड़ी समस्या है विदेशों की। जब टीचर भाई और बहनें हमारे पास आते हैं तो वो ये कहते हैं कि वहां तो बच्चों को संभालना, मतलब ये बहुत कठिन काम है, भारत में तो फिर भी ठीक है
जी।
तो ये चंचलता, ये विकृति, ये उनकी अस्थिरता और ये उनके अपडेटेड विचार
जी,
ये सब वास्तव में उन्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं और इसकी अवेयरनेस उनको कराना जरूरी है। क्योंकि हो क्या गया है कि आज हर व्यक्ति जिस मान्यता को लेकर चल रहा है वो ये सोच रहा है कि ही इज राइट, जबकि कुछ चीजें गलत हो रही हैं, जिसका आभास, जिसका एहसास उसे नहीं हो रहा है। तो हम एक सत्य बात जो प्रकाश है
जी,
जो उनको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, वो उनको अवश्य सिखाएंगे। और जैसा मेरा अनुभव है, मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे बच्चे अच्छी चीजें सीखना चाहते हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि के द्वार अच्छी चीजों के लिए हमेशा खोल के रखे।
और यदि इसमें भी हम देखें भ्राता जी, तो इसमें भी उनकी क्रिएटिविटी दिखाई देती है कि यदि उन्होंने इसे चेंज किया है तो कितना दिमाग लगाया है। तो बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता तो विद्यार्थियों के पास है, नो डाउट, लेकिन उसकी दिशा शायद कहीं गलत हो रही है।
बस बुद्धि की शक्ति जो एक विद्यार्थी के पास है वो बचपन से ही बहुत सुंदर होती ही है, उसकी जो क्रिएटिव एनर्जी उसमें है उसको एक पॉजिटिव दिशा देना
जी,
ताकि वो उनके कल्याण में काम आ जाए, ये बहुत आवश्यक चीज है
जी।
तो मैं इसी बात को कहूं तो ये जो चंचलता उनमें आ गई है, एक तो ये चीज है कि बच्चे चंचल होते ही हैं, अगर बच्चों में चंचलता ना हो, वो लड़े झगड़े नहीं, गिरे चढ़े नहीं, 10-20 बार उछल कूद न करें, तो न तो उन्हें आनंद आएगा न उनका शारीरिक विकास होगा। तो मेडिकली ये सब चीजें बड़ी नॉर्मल, बड़ी कॉमन सी भी हैं, परंतु जहां वो चंचलता उनके मन को चलायमान कर दे जहां वो चंचलता उनकी बुद्धि की शक्ति को नष्ट करने लगे,
कहें कि चंचलता उस श्रृंखलता में परिवर्तित हो जाए,
श्रृंखलता में बदल जाए, तो ये चंचलता उनके लिए बहुत कष्टदायक, हार्मफुल या उन्हें असफलता के मार्ग पर ले जाने वाली होगी। इसलिए बात तो वही है कि एक विद्यार्थी के लिए चंचल नहीं लेकिन काग जैसी चेष्टा, यानी ग्रहण करने की, विद्या को ग्रहण करने की मन में तीव्र उत्कंठा हो, वही तो उसको उस जगह ले जाएगी जो उसकी मंजिल है, चाहे उसको मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं या कोई हायर कंपटीशन उसको पास करना है या उसको कोई अच्छा इंटरव्यू देना है। तो अगर ग्रहण शक्ति उसकी कमजोर हो गई चंचलता के कारण, तो वो हमेशा अपने को हर फील्ड में असफल पाएगा और तब निराशा का घोर अंधकार उसको इस तरह डुबो देगा कि उसे कहीं भी उजाला दिखाई नहीं देगा। इसलिए काग चेष्टा हो, बगुले जैसा ध्यान, ध्यान या एकाग्रता, ये बहुत अच्छी बात हमारे आचार्यों ने कही थी कि जैसे बगुला मछली का ध्यान में ऐसे मगन रहता है, मछली को पतन चलता और मछली आई और उसने उसको हप किया,
जैसे कोई साधक एक टांग पे खड़े होकर साधना कर रहा हो।
बस ऐसे ही विद्यार्थी को अपनी संपूर्ण शक्तियां लगा देनी चाहिए विद्यार्जन में। मैं इसको इन शब्दों में कहूंगा कि अपने को फुल्ली डेडिकेट कर दें वो विद्या प्राप्ति में, जो जो कुछ वो सीखना चाहते हैं, बस ये समझ लें कि ये सीखने का काल है, फिर लाइफ को एंजॉय करेंगे। अगर इस समय को उन्होंने महत्व न दिया तो समय उन्हें हमेशा धोखा देगा, समय पर उन्हें टक्कर लगेगी और तब वो उस समय को याद करेंगे जब उनके लिए सुंदर समय था कुछ करने का। तो बको ध्यानम भी हो, स्वान निद्रा, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी नींद साउंड ना हो, मैंने चर्चा की है कि
स्वान
हम साउंड स्लीप,
जैसे कुत्ते की नींद बहुत सेंसिटिव होती है,
वो सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं, नींद तो हमारी साउंड ही होनी चाहिए। हो सकता आचार्यों ने तत्कालीन समय को ध्यान में रखते हुए ये बात कही है, आज हमारी नींद भी बहुत साउंड हो ताकि मन और बुद्धि फिर से एनर्जेटिक हो जाए, शरीर भी फिर से फ्रेश हो जाए।
जी जी।
और ब्रह्मचर्य जिसकी हम चर्चा कर चुके, सदाचारी जिसका आचरण बहुत श्रेष्ठ हो
जी,
और आहार भी उसका संतुलित हो, इनकी चर्चा हम कर चुके। तो टोटल अगर हम अति आहार कर देंगे तो हम चर्चा कर चुके, उससे बॉडी भी अनहेल्दी होगा और ब्रेन भी डल होने लगेगा
जी,
और अगर हम निद्रा भी बहुत ज्यादा लेने लगेंगे वो भी बहुत अच्छा नहीं होगा। खैर बच्चे ज्यादा निद्रा तो नहीं लेते, जो होशियार हैं जिनको अच्छे अंक लाने हैं, तो ये थोड़े बच्चों की ये हो सकती है चंचलता या अति भोजन अति निद्रा, लेकिन बहुत बच्चे जहां तक मैं देखता हूं, मुझे विश्वास है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और अच्छे लक्ष्य को लेकर चलते हैं। बात यही है कि उन्हें एक अच्छी दिशा शिक्षक भी दें। शिक्षकों की बात जो आपने की थी, शिक्षकों की समस्या तो है पर उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो स्वयं भी हैं। केवल बच्चों की ओर उंगली उठा देने से काम नहीं चलेगा। शिक्षक अगर बहुत योग्य हों तो वो वास्तव में डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऐसा देखा है, बहुत अच्छे हमारे लेक्चरर जो जब पढ़ाने जाते हैं तो बच्चे उनका बहुत सम्मान करते हैं और बिना उनके डांट डपटे ही वो डिसिप्लिन रहते हैं। तो ये
उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, और इस बात को थोड़ा तो मान के चलना पड़ेगा कि बच्चे हैं, इस उम्र में हैं, तो थोड़ी बहुत उनमें ये चंचलता या शरारत वाली बात तो रहेगी,
क्योंकि जब वो स्वयं भी बच्चे थे वो भी तो ऐसे ही थे,
वो भी उछल कूद किया करते थे,
सभी करते हैं।
जी जी जी। तो ये लाजमी है, लेकिन बात जहां मूल्यों की बात आ जाती है भ्राता जी, ये तो बात रही कि एक शरारत जो बचपन में आमतौर पर होती है, लेकिन एक अनुशासन या अनुशासनहीनता की बात जब आती है तो ये शब्द ही बहुत बड़ा लगने लगता है, अनुशासनहीनता, जो कहीं उसको ले जाकर कि हम देखते हैं समाज में कहीं और कहीं गलत दिशा में ना ले जाए। तो ये जो अनुशासन है या जीवन में जो मूल्यों का महत्व है विद्यार्थियों के लिए, मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे मूल्यों की चर्चा जरूर आप करें, चूंकि आप एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, बच्चों के अंदर किन किन मूल्यों का सिंचन किया जाना चाहिए या बच्चे भी किन मूल्यों पर ध्यान रखें ताकि उनका जीवन बहुत श्रेष्ठ बने, भविष्य बहुत श्रेष्ठ।
देखिए, ये बचपन काल मनुष्य का ऐसा होता है कि उसमें वो एक सफेद कागज है
जी,
वो एक ऐसी स्लेट है जिस पे अभी कुछ लिखा नहीं गया है
जी।
और बच्चों को ये कुछ आता नहीं है कि उस पे वो क्या लिखें, ये लिखने वालों पे डिपेंड करता है, चाहे वो माँ बाप हों या उनके शिक्षक हों
जी।
तो हमारे इस विद्या के क्षेत्र में इस चीज की बहुत आवश्यकता है कि सिखाने वाले बहुत अच्छे हों। मान लो एक बच्चा झूठ बोल रहा है
जी।
तो उसे ये पता थोड़ा है कि वो कुछ गलत कर रहा है। एक बच्चा ईमानदार नहीं है, उसे भी इसकी कोई अवेयरनेस नहीं है कि वो डिसऑनेस्ट है और इसका कोई भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। एक व्यक्ति को मान लो बचपन से क्रोध आ रहा है बच्चे को, तो उसे भी उसके नुकसानों का कुछ ज्ञान नहीं है। तो एक्चुअली हमारी एजुकेशन में ये मॉरल वैल्यूज की शिक्षाएं जितनी अच्छी दी जाएंगी, जैसे मैंने कहा था, तो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय से टच डिलाइट नाम से एक प्रोग्राम जो वैल्यू एजुकेशन बच्चों को देता है चलाया गया और परिणाम आशातीत रहे। सचमुच उनके माँ बाप भी बहुत खुश हुए कि पहले हमारे बच्चे बात बात में रूठते थे, गुस्सा करते थे, नाराज होके जिद करके एकदम ऐसे चले जाते थे कि उनके मनाने में ही माँ को बहुत समय देना पड़ता था। अब उन्होंने वो सब छोड़ दिया।
तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए जाने चाहिए स्कूल्स में, टीचर्स और साथ ही पेरेंट्स भी ध्यान रखें तो इन मूल्यों की जागृति आएगी। मुझे एक बात ध्यान आई ब्रता जी, एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मैं सुन रहा था तो उन्होंने भी इस बात को मेंशन किया था कि बचपन में उनके गुरुजनों ने जो जो ऐसी मूल्यपरक कहानियां उन्हें सुनाई थी कि किस मूल्य को लेकर के कौन महान बना, उसकी अमिट छाप उनके अंदर रही और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को कम से कम ये मूल्यनिष्ठ जो शिक्षाप्रद कहानियां हैं, बातें हैं, प्रेरक प्रसंग है, वो अवश्य सुनाई जानी चाहिए गुरुजनों के द्वारा ताकि उनके जीवन पर एक ऐसा प्रभाव पड़े कि वो बड़े होकर के भी इस बात को फॉलो करते रहे।
बिल्कुल, यही आपने बात कही तो मुझे भी याद आया
जी।
हम तीन मित्र होते थे नाइन्थ क्लास से और मेरा एक मित्र जो कुछ मुझे सिखा गया वो मुझे न केवल एजुकेशन के फील्ड में काम आया लेकिन इस स्पिरिचुअल लाइफ में भी वो जीवन का बेस बन गया। मैं बहुत होशियार था, मैथमेटिक्स फिजिक्स में तो विशेष रूप से, तो रेसिस में मैं बच्चों को पढ़ाया भी करता था अपने ही क्लास वालों को
जी।
तो वो मुझे देखता था तो वो मुझे कहता था, और वो था बिल्कुल कमजोर एक हमारा फ्रेंड, तीन हम थे, दो हम बहुत होशियार थे, एक बहुत कमजोर था, वो मुझे कहता था तुम बहुत होशियार हो लेकिन ध्यान रखना कभी जीवन में अहंकार ना आ जाए। अहंकार आते ही गिरावट शुरू हो जाती है। वो बच्चा नाइन्थ क्लास का जो पढ़ाई में कमजोर है मुझे एक ऐसी सीख दे गया और इस चीज को मेरे मन ने जैसे ग्रहण कर लिया था कि बिल्कुल सत्य बात है कि अहंकार मनुष्य को अंधकार के मार्ग पर ले जाता है, अहंकार मनुष्य को सुखी जीवन जीना अलाउ नहीं करता है। तो मैंने ध्यान रखा और लौकिक पढ़ाई के फील्ड में भी और फिर स्पिरिचुअल लाइफ में भी। स्पिरिचुअल लाइफ में तो ईगोलेस होना एक मुख्य बेस
मानी जाती
है। कितने भी हम आगे बढ़ जाएं लेकिन अगर हमारे अंदर अहंकार रहता है तो हमारी छवि एक ऐसी होती है जैसे एक घड़े में अमृत हो भरा हुआ लेकिन एक बूंद उसमें जहर भी डाल दिया जाए
और लोग दिल से सम्मान भी नहीं देते, दूर रहते हैं, कटे रहते हैं,
बात भी नहीं सुनेंगे और बस दिखावे का सम्मान देंगे क्योंकि भाई हम बड़े हैं लेकिन हम उनके दिलों पर राज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी चीजें मैं देखा कि जहां बच्चों को माता पिता के बारे में सम्माननीय दृष्टिकोण रखना सिखा दिया, जहां उन्हें अपने शिक्षकों की वास्तविक वैल्यू दिखा दी गई कि इनकी दुआएं, इनका आशीर्वाद, इनकी सुभावनाएं आपके उत्थान में बहुत अहम भूमिका निभाएंगी और जहां उन्हें ये सिखा दिया कि ये काल ऐसा है कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे के विचारों को वैल्यू देना है, ईमानदारी और सत्यता का मार्ग अपनाना है, तो ये चीजें सदा उनके
साथ रहती हैं। तो ब्रता जी जो आपने कहा बहुत ही सुंदर बात लगी, एक कोरा कागज है वो, एक ऐसी स्लेट है जिसपे अब तक कुछ नहीं लिखा गया है, एक ऐसी मिट्टी है जिसे कोई भी स्वरूप दिया जा सकता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बात हो, हमारे शिक्षक, हमारे पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें अच्छी से अच्छी वैल्यू परक बातें, मूल्य परक बातें सिखाएं और ये ना सोचें कि ये इस चीज को नहीं सीखेंगे, नहीं ग्रहण करेंगे, संभवतः इस चीज को कहीं ज्यादा वो सीखते और ग्रहण करते हैं।
बात यही हो गई जैसा आपने कहा
जी।
तो कॉलेजों में हम जाते हैं तो अधिकतर लेक्चरर, प्रोफेसर, विद्यार्थी विद्यार्थियों की बुराई करेंगे, ये तो ऐसे हो गए हैं, ये सुनते नहीं हैं, ये इनडिसिप्लिन्ड हैं, ये बड़ों का सम्मान नहीं करते, तो ये जो एक मान्यता हो गई है इसने कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दी है। जैसा हमने चर्चा की थी मनोबल की चर्चाओं में कि जो विचार हम बार बार करते हैं, जो एटीट्यूड्स हमारे मन में दूसरों के लिए बन गए, हमसे वैसे ही संकल्पों के वाइब्रेशंस उनको जाते हैं। तो बच्चों को ये बार बार कहना ये मानते नहीं है, या ये कहना ये तो सुधरेंगे ही नहीं, ये तो है ही ऐसे, ये समझो उन्हें श्रापित करना है। हर व्यक्ति सुधरना चाहता है, और बचपन काल तो विद्यार्थी काल तो ऐसा है जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि सिखाने वाले चाहिए, सीखने वाले सीखने के लिए तैयार हैं। मैं तो इस अगर खुले दिल से मुझे बोलने के लिए कहा जाए तो मैं कहूंगा शिक्षकों ने अपना स्वाभिमान अपना स्वमान खोया है, उनके जीवन में ही मोरल वैल्यूज नहीं रही, वही घर से अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करके टेंशन से वहां आते हैं, वही आके क्लास में सिगरेट पीते हैं, कोई शराब पी के भी आ जाते हैं, तो भला वो बच्चों से सम्मान की कामना कैसे कर सकते हैं।
जी जी जी, तो दोनों दो पहलू हो गया भाई जी। एक बात आपने कही कि एक एटमोसफियर में नेगेटिविटी ना फैलाएं, या एक ऐसी बेड एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी की ये तो है ही ऐसे, ये बदलेंगे नहीं, या ये वातावरण चेंज नहीं होने वाला है, एक तो इस चीज पे ध्यान दिया जाए, और दूसरा ये कि खुद भी एक आदर्श प्रस्तुत किया जाए। एक बहुत अच्छी बात ये जो आपने कही है, आदर्श का अभाव कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है, जिसके कारण ये सारी समस्या है। आज यदि विद्यार्थी वर्ग देख भी रहा है अपने बड़ों की ओर या अपने चारों तरफ, तो वो आदर्श ढूंढता है लेकिन उसे आदर्श दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं कारण है कि उसके अंदर ये जो मूल्यहीनता कह ली जाए या अनुशासनहीनता कह ली जाए या मूल्यों की कमी कह ली जाए, उसका ये भी एक कारण?
वो एक बच्चा तो सोचेगा ही ना कि सभी ऐसे हैं तो हम भी ऐसे ही रहेंगे, हमें सीखने क्या जरूरत है, उन्हें ये भी तो नहीं पता है बुरे हैं। तो मैं यहाँ ये पॉजिटिव बात कहना चाहूंगा कि एजुकेशन सिस्टम में जो शिक्षक हैं और अभिभावक भी, चाहे जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें बच्चों के लिए एक अच्छा एटीट्यूड अपने मन में क्रिएट करना चाहिए कि ये हमारे देश के महान नागरिक बनेंगे, ये हमारे देश को दिशा प्रदान करेंगे, ये बड़े बड़े इनमें से कई कर्णधार बनेंगे, कई बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स बनेंगे जो देश के कार्यों का संचालन करेंगे, ये भविष्य में चल के चरित्रवान बनेंगे, सबको सुख देंगे, सबकी समस्याओं का ये निदान करेंगे। ऐसा अगर वातावरण हम क्रिएट करें अपने विद्यालयों में तो इसका इफेक्ट बच्चों पर बहुत अच्छा होगा, ये निगेटिव एनर्जी जो क्रिएटेड हो गई है इसको हम कहीं ना कहीं वाश ऑफ करने में सफल होंगे।
बिल्कुल, तो ये एक पॉजिटिव चीज लाई जाए, भले ही कहीं ना कहीं देखने में ये आया कि बच्चों में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है भी, तो भी बड़ों का ये फर्ज बनता है कि उन्हें अप्रिसिएट करें, उनकी क्वालिटीज को देखें, उनकी अच्छाइयों को देखें, आगे बढ़ाएं उन्हें, ताकि उन्हें भी प्रोत्साहन मिले कि हमारे बड़े हमारी अच्छाइयों को देख रहे हैं।
मैं एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं कि 50 स्टूडेंट हैं क्लास में, कभी कभी हम उनमें से 5 को देखने लगते हैं, हम उन 5 को न देखें, 45 तो है ना, उन 45 में 25 बहुत अच्छे होंगे और 20 ऐसे होंगे जो अच्छा बनना चाहेंगे। ऐसा एटीट्यूड अगर हम बना लें और शिक्षक इस बारे में थोड़े से अपने में अच्छी धारणाएं अच्छी वैल्यूज ले आए, उनका चित्त पीसफुल रहे, वो बहुत खुश नेचर के हों, वो छोटी छोटी बातों में इरिटेट होने वाले न हों, वो अपने मुख से बच्चों से बुरा व्यवहार करने वाले न हों, उनका क्रोध इस सीमा तक न हो जैसा कहीं कहीं हो चुका है कि बच्चे की हड्डी टूट जाए, किसी किसी की मृत्यु हो गई, इस सीमा तक वो अपने क्रोध के उद्वेग को न ले जाएं, तो एक कंट्रोल्ड माइंड शिक्षकों का अगर होगा वही बच्चों के लिए आदर्श होगा। और मैं तो ये देख चुका हूं जो मैं बच सिखाता हूं शिक्षकों को, अगर शिक्षक स्वयं के मन पर राज करते हैं तो बच्चों पर वो सहज ही राज करेंगे, बच्चे स्वतः ही डिसिप्लिन रहेंगे, उन्हें बोलना भी नहीं पड़ेगा।
यदि हमारे जीवन में मूल्य है तो वो मूल्य आगे तक जाएंगे और बच्चे उस चीज को स्वीकार करेंगे। प्रताप जी, टीचर्स की बात आप अभी कह रहे थे, तो आजकल ये हो गया है कि बच्चों को वो डांट भी नहीं सकते, मारना तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई है, तो टीचर्स भी कहीं ऐसे हो गए हैं, मतलब इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं, ना हम मार सकते हैं ना डांट सकते हैं, यदि हमने थोड़ा सा कुछ कह दिया और कहीं बच्चे ने कुछ कर लिया ऊपर से हमारे ऊपर एक्शन, जैसा चल रहा है चलने दो। तो वो अपनी एक बहुत बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे गुरुजनों की थी, शिक्षकों की थी, कहीं ना कहीं वो इससे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात निकल कर आ गई है
जी।
चाहे हमारी समाज की व्यवस्था चाहे कानून व्यवस्था
जी,
दोनों इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि उन्होंने शिक्षकों को, ये सत्य बात है कि ऐसी स्थिति तक पहुंचा दिया है, वो कहते हैं हमें तो सैलरी मिलती है, हमारा काम है पढ़ा देना, पढ़ना न पढ़ना इनका काम, इनके माँ बाप जाने, जिन्हें स्कूल कॉलेज का जो रिजल्ट आएगा वो जाने, हम क्यों परेशानी में लाएं अपने को। तो एक स्ट्रेस फ्री वो भी रहना चाहते हैं,
स्ट्रेस फ्री टीचर
नहीं तो वो फील करते हैं कि इन बच्चों के कारण हमारे ब्रेन पर बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हम भी बीमार होते हैं, इस स्ट्रेस को लेकर हम अपने घर में जाते हैं, हमारे घर में भी तो परिवार है, हमारे बच्चे हैं, वो स्ट्रेस बच्चों पे ट्रांसफर हो जाता है और इस तरह हमारा साइकिल पूरा बिगड़ा रहता है। तो ये बात ठीक है, इस चीज में भी हमें थोड़ा सुधार लाने की जरूरत है। बात वही मैं फिर कहूंगा, ये स्पिरिचुअलिटी की बात है कि अगर शिक्षकों का मन बहुत पॉजिटिव हो
जी,
उनका भी मन डिसिप्लिन्ड हो, वो भी अपने जीवन को कुछ हद तक निर्विकार बनाएं, इन व्यसनों से मुक्त रखें, तो होगा ये कि बच्चों के मन में शिक्षक के लिए सम्मान पैदा होगा
जी,
जो उन्होंने खो दिया है। ये शिक्षकों को स्वयं सम्मान अर्जित करना पड़ेगा अपनी अच्छी अच्छी वैल्यूज को जीवन में लाकर। उसके बाद जब बच्चों के मन में शिक्षक के लिए सम्मान हो जाएगा तो फिर वो जो कहेंगे वो हाथ जोड़ के स्वीकार करेंगे। वो बच्चे शोर तो करते ही हैं, वो कहेंगे बच्चों शांत, वो सम्मान के कारण शांत हो जाएंगे। तो यहां से हमें अब शुरुआत करनी पड़ेगी। एक समय था बच्चों को बदलने की जरूरत थी, अब समय उल्टा हो गया है,
अब बड़े जो हैं उनमें थोड़ी समझदारी पूर्वक कुछ बातों को लाना होगा। प्रताप जी, ये जो बात मैं कर रहा था, एक अचानक मुझे इंसिडेंट याद आ गया। एक टीचर मुझसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एग्जाम चल रहा था और कुछ ऐसे बच्चे थे, उसमें से एक विशेष बच्चा जो चीटिंग कर रहा था, उसने पूरा ही अपना गाइड जो है वो खोल के बैठा हुआ था और लिख रहा था। इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और उनको बाहर कर दिया, निकाल दिया। अब ये तो उनको करना ही था चूंकि वो उस समय ड्यूटी पर थे, लेकिन अब जिस यूथ को, जिस विद्यार्थी को उन्होंने बाहर किया था, अब ये विद्यार्थी उनको 2 माह से टॉर्चर कर रहा है कि आपने मुझे लिखने नहीं दिया, मेरा पूरा साल बिगाड़ दिया, मैं आपको देख लूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो इस स्थिति से टीचर्स कैसे निपटें?
देखिए, ये भी स्थिति आजकल बहुत भयावह होती जा रही है, इसलिए एग्जामिनेशन के समय पुलिस को खड़ा करना पड़ता है डिसिप्लिन कायम करने के लिए। ये तो टोटल जो सिस्टम में गिरावट आई है, और यही तो कारण है कि शिक्षक बेचारे क्या करें भाई, चलो जो भी करना करने दो इनको। अब फाइनल तो यही होगा कि अगर कोई बच्चा चीटिंग के द्वारा अच्छे मार्क्स ले भी आए, लेकिन जब वो फील्ड में जाएगा तब तो वो अपने को खाली पाएगा ना, तो वहां तो वो फिर से अपने असफलता के द्वार ही खोल रहा है। इसलिए एक अच्छे विद्यार्थी को यही सोचना चाहिए, उसको ज्ञान अर्जित करके अपनी विवेक शक्ति को बढ़ाना है। केवल अंक अच्छे आ जाएं यही पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन उसकी बुद्धि का विकास हो, एजुकेशन उसकी बुद्धि का विकास करे, उसके टैलेंट्स में विकास करे। अगर हम ये लक्ष्य बना लेंगे तो इन परिस्थितियों से हमें पास नहीं करना पड़ेगा, उससे शिक्षक भी सेफ रहेंगे। अब शिक्षक भी क्या करें, उनको अपने कर्तव्य भी पूर्ण करने हैं और फिर ये परिणाम भी उनके सामने होता है।
जी 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 भ्राता जी, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है मूल्यों की, जिसकी आजकल चर्चा ही नहीं होती, और हम चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थी जो कि देश के भविष्य हैं, आपकी इस चर्चा, आपके इस प्रकाश, आपके समाधान के माध्यम से बहुत मूल्यवान बने और हमारा देश मूल्यवान बने। आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा कि मूल्य किस कदर हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। हम VIP तो बनना चाहते हैं, लेकिन VIP का फुल फॉर्म हम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कहते हैं, लेकिन यदि एक दूसरे रूप में देखा जाए तो इसका रूप है वैल्यूज इन पर्सनालिटी। अर्थात जितना ज्यादा हम अपने व्यक्तित्व में वैल्यूज को शामिल करते जाते हैं उतना ही ज्यादा हमारा व्यक्तित्व निखरता है, उतना ही ज्यादा हम वीआईपी बनते हैं, देश का भविष्य हमारे कंधों पर है। तो हम मूल्यों पर जरूर ध्यान दें, वातावरण किसी भी प्रकार का हो, लेकिन हम अपने जीवन को मूल्यवान बनाकर देश को मूल्यवान बनाएंगे, ऐसा हम संकल्प अवश्य लें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।